अब आगे जो है ना प्रैक्टिकल इशू है, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि उस सोसाइटी के गुनाहों को हाईलाइट किया जा रहा है, अब यहाँ दूसरी तरफ अब आ गया है कि उस सोसाइटी में क्या कॉमन चीजें थी जिसको इस्लाम ने चेंज करना था। मैं आपको अपने लफ्जों में बता देती हूँ कि अरब अपनी माँ से भी निकाह कर लेते थे। कौन सी माँ? जो बाप की बीवी होती थी लेकिन इनकी सौतेली माँ। ठीक है, बाप के मरने के फौरन बाद क्या होता था कि औरतों पे जुल्म तो वैसे ही बहुत था। एक शख्स फौत हुआ, चार पांच बीवियां थी, होती थी पांच पांच भी होती थी, इस्लाम ने चार पे रोका, इनकी तो दस दस नौ नौ बीवियां भी होती थी। अब जब वो बाप फौत हुआ तो जो बड़ा बेटा होता था ना वो वारिस बन जाता था, विरासत उसको मिलनी थी। जिस तरह बाप की बाकी चीजें सोना चांदी चीजें बाप के विरसे में आती थी ना, तो माएं भी एक किस्म का विरसा ही समझी जाती थी। यानी जुमला लिख लें पीछे अपने विरासत के हकूक डिटेल से पढ़े हैं कि इस्लाम से पहले औरत को विरासत में हिस्सा मिलना तो दूर की बात है, वो खुद माले विरासत होती थी। बात समझ गए? अब जब वो माले विरासत होती थी तो अब हकीकी माँ तो एक थी, बाकी सौतेलियां थी, तो क्या कहता? कहता कि ये अब मेरी मलकियत है, क्योंकि उस दौर में तो इंसान तक बिकते थे। क्या करता? अपने कब्जे में करता। कोई तो उनमें से किसी के साथ शादी करना चाहता तो शादी कर लेते। कुछ लोग क्या करते कि बगैर निकाह के अपने घरों में उनको रखी रखते, बाज उनकी शादियां दूसरी जगह कराते तो हक मेहर खुद ले लेते। यानी कमोडिटी बना लिया ना माँ को, औरत को, क्योंकि औरत उस दौर में इसी तरह बिकती बकाती थी। इस्लाम ने कहा, आयत 19 देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लायो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, इट्स नॉट अलाउड फॉर यू। क्या? अन तरिसुन निसा करहन, कि तुम वारिस बनो औरतों के जबरदस्ती, यानी औरतों के ऊपर जबरदस्ती इसका कब्जा कर करा के तुम उनके वारिस नहीं बन सकते। करहन वही लफ्ज है जिसको कुरहन कहते हैं, और कराहत का लफ्ज भी उर्दू में हम इसी से बोलते हैं। वला तादुलू हुन्ना, और ये भी जायज नहीं है कि तुम इनको रोको। उजल का लफ्ज है इसमें, आइन दुआत लाम, रोक लेना, बैरियर। किस बात पे? लितस खबू बिवादी मा आते तुमू हुन्ना, कि तुम इनसे वो वापिस ले लो जिसका कुछ हिस्सा तुम उनको दे चुके हो। इसमें पहला हिस्सा तो वही था जितना आपको बता दिया कि बाप के मरने के बाद उसकी बीवियों के तुम वारिस नहीं बन सकते। बात वाजे, उनको माले विरासत नहीं समझो। और दूसरा हुक्म इसमें क्या है कि निकाह के वक्त तो बड़े चौ थे, लाड दिखाए, ये दो वो दो, तोहफे दो, मुंह दिखाई में बरी में ये आ गया वो आ गया, और बाद में उनसे वो सारा कुछ वापस लेते थे। यानी दूसरा हुक्म इस एक आयत में क्या मिल रहा है कि कोई मर्द अपनी बीवी को जो माल दे चुका है बाद में उसे वापस ना ले। हाँ, वापस लेना है तो उसकी एक सूरत है, क्या? इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबैना, कि वो औरतें खुले तौर पे बदकारी का इर्तकाब करें। यानी कोई मर्द अपनी बीवी से चीजें वापस ले सकता है कब? जब उसकी बीवी फाहिशा हो। पता लग गया मेरी बीवी मेरे साथ किसी और के लिए भी सोचती है और उसको भी उसने हक वही दिया हुआ है, तो ऐसा मर्द अपनी बीवी से फिर सारी जो भी चीजें दी ली होंगी वो उससे वापस ले सकता है, क्योंकि उन्होंने ये गलत काम किया। देखिए पीछे हमने पढ़ा ना कि खुले तौर पे अगर बदकारी हुई पीछे पड़ा तो फाजू हुमा, इस तकलीफ दो उनको, उनके ऊपर पकड़ो। लेकिन अगर इस मामले में कि एक औरत बुराई करती है और मर्द कहता है कि जब ये मेरी बीवी नहीं रही तो मैं इसको अपनी चीजें क्यों दूं, तो मर्द उससे वापस ले सकता है। लेकिन वाशिरुहुन्ना बिलमारूफ, तीसरा हुक्म इसी एक आयत में कि औरतों के साथ अच्छे तरीके से मुआशरत इख्तियार करो, औरतों के साथ हमेशा अच्छा ख्याल रखो, इनका भले तरीके से रहो, नेकी और आस्ती के साथ इनके साथ चलो। और नहीं पसंद आती बीवी, शादी हो गई, आई डोंट लाइक हर, या आई डोंट लाइक हर पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए जिंदगी टूटते घरों को बचाने का असूल लिखा रहा है, फाइन कर इख्तुमुहुन्ना, फिर अगर तुम नापसंद करोगे इनको, फासान तक रहो शैयन, तो हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को। वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और अल्लाह उसी में तुम्हारे लिए खैर कसीर रख दे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा सूल है। यानी अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो बड़ी बात नहीं है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो, अल्लाह ने इसमें बहुत बड़ी खैर रखी हो। आपको याद है ये मजमून पीछे पड़ा था सूरह बकरा में, वहां कैसे आया था? जिहाद के जिरमन में, कि तुम्हें लड़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन उसमें खैर है। तो यहां ये बता दिया, किसी वजह से शौहर को अपनी बीवी नापसंद है, नहीं अच्छी लगती शक्ल से अक्ल से किसी बात से, तो छोड़ने की बजाय देखो कि उस औरत से तुम्हें खैर मिल रही, औलाद मिल रहेगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं। वो औरत शक्ल से अच्छी नहीं है लेकिन घर तुम्हारा बड़ा अच्छा चलाती है, तुम्हारी धोबन है, तुम्हारी दर्जन है, तुम्हारी कुक है। जब एक औरत में इतनी उसकी कोई अच्छी बात देख लो, कितना खूबसूरत अंदाज है। भी हदीस में भी हम देखेंगे ये चार्ज। चलिए अब आप कहते नहीं जी हमने इसको नहीं रखना, तो अगली आयत देखिएगा आयत 20, बीवी को अल्लाह कहता रख लो, जाने ना दो। घरों को तोड़ना नहीं होता, घर जोड़ते हैं। लेकिन वाइन औरत तुम, और अगर तुम्हारा इरादा हो किसका, मुसलमान मर्द का, किस बात का, इस तब्दाल जौज मकान जौजन, एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को ले आने का। कहते नहीं इसको नहीं रखना, दूसरी लानी है, फैसला कर लिया तुमने दूसरी ही लानी है। जबकि वात ही तुम एहदा हुन्न किंदारा, और तुमने इनमें से किसी एक को ढेरों माल दे दिया हो। यानी जब शादी की थी तो उसको हक मेहर दिया, फिर शादी के बाद पहली एनिवर्सरी पे दिया, कुछ ना कुछ दिया, बाज मर्द जायदादें लगा देते हैं बीवियों के नाम पे, गाड़ी उसके नाम पे ले ली। फरमाया फला ताखुजू मिनहु शैया, अब उससे कुछ वापस नहीं ले सकते, अब कोई वापस ना लो, हक मेहर तो लेना नहीं था, बाकी भी नहीं ले सकते। क्यों? अब देखिए कितना खूबसूरत जुमला है। मेरे ख्याल है औरतों के माँ बाप भी नहीं वो बात कह सकते जो अल्लाह ने औरतों के बिहाफ पे शोहरों को समझा दी, अता खुजूना हो बुख्तान, क्या तुम वापस ले लोगे उससे बोहतान लगाकर। जाहिर है जिस मर्द ने बीवी से जान छुड़ानी है वो उस पर इल्जाम लगाएगा ना, ये ऐसी है ये वैसी है, कहा तुम उस पर बोहतान लगाते हो, वो इस्म मुबीना और सरीह गुना के मुर्तकिब होकर। यानी एक मर्द जान छुड़ाना चाहता है अपनी बीवी से तो बहाने ढूंढ रहा है कि इसके अंदर कोई बुराई साबित करूं ताकि खानदान और बिरादरी और माशरा मुझे सच्चा के। अल्लाह ताला कहते हैं आयत 21 में, वकई फता खुजू ना हो, तुम ले भी कैसे सकते हो, ये कैसे वापस ले सकते हो उससे चीजें, वकद अफदा बादुकु मिला बादिन, जबकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा किनाया। ये अफदा जो है ना, ये शौहर बीवी के जिस्मानी ताल्लुक की तरफ इशारा है। ढका छुपा अल्लाह ने ये जुमला यहां रखकर बता दिया कि जिस बीवी के साथ तुमने खुशी ली, जिसने तुम्हारे जज्बात को तस्कीन दी, जिसने तुम्हारे लिए अपने जिस्म को खतरे में डाला, तुम्हारे बच्चों की मां बनी, आखिर जिंदगी का कोई अच्छा दिन तो याद करो, जिस वक्त इसने तुमको खुश किया था, तो क्या तुम ये सब भूल जाओगे। अफदा का लफ्ज नया है, इसको नोट करें जरा, फाद वाओ। अलफदा अरबी में कहते हैं सहन को, खुली जगह, वसी जमीन। अलफिदाऊ कहते हैं पानी जो जमीन पर बह रहा हो। किनाया है मर्द से औरत के ताल्लुक का, जिमा का, क्योंकि शौहर बीवी की खलवत और जो उनका मुबाशरत है, मुराद यह है कि बीवी के साथ खुलेआम बंदा किसी वक्त भी घूमे फिरे, घर में हो अकेले, कोई एतराज नहीं करता। तो आज तुम उस बीवी को छोड़ना चाहते हो, कुछ अकल के नाहुन लो, होश करो, शऊर देखो, कोई शराफत का सबूत दो। तुम कैसे उसके ऊपर इल्जामात लगा रहे हो जबकि इतने करीबी तुम रह चुके हो। और हकीकत है कि शौहर बीवी का ताल्लुक दुनिया का सबसे करीबी ताल्लुक है। माँ बेटे का भी ताल्लुक जवान होने के बाद वो नहीं हो सकता जो बीवी और शौहर का है। हम राज हैं, हम साथ हर खुशी गम में साथ होते हैं। और फिर अल्लाह वो निकाह के कबूल कबूल वाले बोल याद करवा रहे, वखस न मिन को मीसाकन गलीजा, और वो तुमसे मजबूत कौलो इकरार ले चुकी हैं। कब लिया था? इतने हक मेहर के इवज इस औरत के साथ निकाह मंजूर है, और मर्द ने उस वक्त क्या कहा था कि इसको सारी जिंदगी के लिए अपने साथ रखूंगा और इसकी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, ना नफका दूंगा, तो क्या तुम उसको भूल गए हो? अब मुझे बताइए ये विमेन राइट्स नहीं है तो और क्या? ये तो बेटियों के बाप भी नहीं कह सकते दामादों को, ये तो दामादों की माओ को नहीं कह सकते हमारी बेटी को अच्छा रखना। और ये जो आयत है ना, इसका शान नजुल सुनिए तो आपको बात और भी अच्छी तरह समझ आएगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये आयत क्या है, ईमान वालों तुम पर जायज नहीं कि औरतों के जबरदस्ती मालिक बन जाओ और उन्हें इस गरज से कैद रखो जो कुछ तुमने इनको दे रखा है, इसका कुछ हिस्सा वसूल कर लो। कहते हैं कि जाहिलियत में किसी औरत का शौहर मर जाता तो शौहर के रिश्तेदार इस औरत के ज्यादा मुस्तहिक समझे जाते। अगर इन्हीं में से कोई चाहता तो इनसे शादी कर लेता, या फिर वो जिससे चाहते इसकी शादी करते, और चाहते तो ना भी करते। यानी औरत का अपने लिए कोई इख्तियार नहीं था बाद में, तो औरत के घर वालों के मुकाबले में शौहर के रिश्तेदार इसके हकदार समझे जाते थे। इस पर यह आयत नाजिर हुई कि या अय्युल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहन, बुखारी की रिवायत है 4579 नंबर की। तो आप देखिए इस्लाम ने औरत को कितनी आज़ादी दी। आज जो लोग कहते हैं, किसी की बात मैं सुन रही थी, एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो कहने लगे कि मैं कहीं था तो नॉन मुस्लिम वहां जमा थे, और कोई नॉन मुस्लिम इंस्टीट्यूट था तो उन्होंने इनको बुलाया था कि विमेन राइट्स पे बात करें, इस्लाम में औरत का क्या। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि उसमें बड़े बड़े लोग भी थे, पुलिस मैन और इस तरह के पढ़े लिखे लोग थे, जो मैंने उनसे कहा कि आपके जहनों में कुछ सवाल हैं तो वो करें ताकि फिर मैं अपनी स्पीच में आपको उनके जवाब दूं। तो कहने लगे, एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स था तो उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लाम ने औरत को माँ बनने यानी बच्चा पैदा करने और एक मर्द की बीवी बनने के अलावा कोई हक दिया आज तक। वो कहते हैं कि हमारी नज़र में यह है कि इस्लाम में औरत एक सेक्स ऑब्जेक्ट और बच्चों की माँ बनती है। फिर वो कहते हैं जब बाद में मैंने उसको एक से दो चार दस किए, हमारा एक अपना लेक्चर भी है औरत के हकूक, मेरे लिए 21 हकूक जमा किए थे जिसमें पहला हक ये कि इस्लाम ने तो औरत को जीने का हक दिया, बेटियों को तो जिंदा मार देते थे। तो याद रखिए आज इतनी बड़ी गलत फहमी है कि इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिए, ये किसके हक हैं। एक नॉन मुस्लिम की बात है, उसने कहा अगर मुझे यकीन ना होता कि ये कुरान ये मोहम्मद सल्लम का लिखा हुआ है तो मैं कह सकता था कि ये कुरान किसी औरत ने लिखा है। आप सूरह निसा पढ़ रहे हैं ना, पांचवा पारा शुरू होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि निकाह करने का तरीका और घर बसाने का ये सब कुछ आ रहा है। सिर्फ सूरह निसा पढ़ लीजिए, लोगों के जहनों से इस्लाम के खिलाफ जो बातें वो दूर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि इस्लाम औरत के बारे में ये सब कुछ बातें क्यों करता है, ताकि औरतों को इन सारी चीज़ों से पता चले कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। और औरत पे इतना जुल्म था, आप सुने पढ़ें इसके बारे में तो आप कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उस दौर में नहीं आई। फिर इस हिस्से से एक और चीज़ पता चलती है कि ज़रूरी नहीं कि बीवी की हर बात ही अच्छी लगे। तो सेम थिंग हमारे लिए भी है, कुछ ज़रूरी नहीं कि हमें अपने शौहरों की हर बात अच्छी लगे। ये तो ज़िंदगी की बातें होती हैं और ये सब कुछ चलता ही रहता है। करना क्या है कि घर को जोड़ा जाए, घरों को खराब नहीं करना। आज आप देखिए कि बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं घरों में, हमारे अपने मुल्कों में पैदा हो रहे हैं, गैर में हो रहे हैं, बाहर हैं। और अल्लाह के नबी दुनिया से जाते जाते जो मैसेज दे गए थे, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज और तुम्हारी बीवियां इनका ख्याल रखो, बहुत सारी हदीसें हैं इसके ऊपर, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आगे आगे खेलते देंगे। ये जो आशिरु हुन्ना बिल मारूफ है, बीवियों को अच्छी तरह रखो, अल्लाह के नबी सल्लम खुद इसका अमली नमूना थे। हजरत आयशा बहुत छोटी उम्र में आपके निकाह में आ गई थी, कहती हैं कि मैं घर में लड़कियों से खेलती, मेरी सहेलियां आती, जो ही नबी सल्लम आते तो वो छुप जाती और आप उन्हें मेरे पास भेजते और वो मेरे साथ खेलती। ये बुखारी की रिवायत है। एक और रिवायत है हजरत आयशा से, कहती हैं ग़ज़वे तबूक या खैबर से वापस तशरीफ लाए और मेरे घर के ताक पर पर्दा पड़ा था, इसमें गुड़ियां रखी हुई थी, हवा चली तो पर्दे का एक कोना हवा से उड़ गया, मेरे खेलने की गुड़ियां नजर आने लगी। आपने पूछा ये क्या है, मैंने कहा मेरी गुड़ियां, इनमें से एक घोड़ा भी था जिस पर कपड़े के पर थे। आपने कहा कि घोड़ा है तो उस पर पर क्यों है, तो हजरत आयशा ने क्या हजरत सुलेमान के घोड़ों के पर नहीं थे। तो वो उसका तस्करा किया और अल्लाह के नबी इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें खुल गईं। अबू दाऊद की रिवायत है। आज हमारे जेहन में दीनदार तौबा तौबा, माथे पे तेवरी, घर में आए तो कर्फ्यू लग जाए, बीवी कांप रही, बच्चे अरे क्या है जी, ये शेख साहब आ गए जी, ये मुफ्ती साहब आ गए जी, ये हाफिज साहब आ गए। कभी आप इस्लामी शौहर तो देखें, मैं कहती हूँ हमें ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमारे शौहरों को इस्लामिक बना दे, इतना नरम मिजाज और नबी सल्लम का जो किरदार हमें नजर आता है। अब मैं वो सारी हदीसें इस वक्त बयान नहीं कर सकती, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आशिरु हुन्ना बिल मारूफ। हजरत अबू बकर जा जा के आयशा को डांटा करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी आपके लाड देखते थे, प्यार करते थे, बीवी के साथ कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की थी और आप औरतों की इतनी इज्जत करने वाले शख्स थे। आपने फरमाया कि जिसको एक अच्छी बीवी मिल गई वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है, दुनिया की बेहतरीन मता नेक बीवी है, खुश अखलाक बीवी है। तो ये सारा कुछ इस्लाम का एक बहुत वसी चैप्टर है। हमने शादी को एक रस्म और एक फंक्शन और अल्लाह को नाराज करने का जरिया बना लिया, हालांकि शादी इज़ अ इबादा, शादी करना, शादी में जाना, शादी खाना, शादी के बाद नस्ल का पैदा होना, ये इस्लाम में ऐसी इबादत है जैसे नमाज, रोज़ा, हज है। लेकिन हमने ना जाने क्या इसका बना दिया। अल्लाह ताला हमें बचाए। और इस्लामी नुक्ता नज़र भी आपको घर का मिलता है कि इस्लाम में एक घर की बुनियाद मोहब्बत पे होती है। शौहर बीवी के ताल्लुक अच्छे हों तभी तो में फ़र्क हो सकता है। लेकिन फ़ैन करिक तुम होना फासान तक रहो शैयन वजह जल्लाह फी ही खैरन कसीरा। बस अब एक आखिरी हिस्सा हमारे सबक का रहता है। पीछे हमने बात जो देखी थी कि मरने के बाद बाप की बीवी से निकाह करते थे, वहाँ वो बात औरतों के तनाजर में थी। अब यहाँ बराह रास्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। I-22 देखिएगा, वला तन के हुमा न कहा आबा उकुम, और ना तुम निकाह करो उनसे जिनसे निकाह किए तुम्हारे बापों ने, मिनन निसाई औरतों से। क्या पता चला? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं तुम उनसे निकाह मत करो। देखिए यहाँ ये जुमला ऐसा भी तो हो सकता था कि अपनी सौतेली माओ से निकाह ना करो, राइट? यहाँ सौतेली माँ का लफ्ज़ नहीं बोला गया बल्कि उस औरत से तुम्हारे बाप ने निकाह किया। गैरत को भरा जा रहा है। ये स्टाइल पे गौर कीजिएगा। ये कहने की बजाय कि अपनी सौतेली माँ से निकाह ना करो, वो आपका अपना ताल्लुक था, यहाँ बाप को बीच में लाकर एक बहुत खूबसूरत असूल समझा दिया गया कि बाप और बेटे का एक औरत के साथ निकाह होना इस्लाम में ये पसंदीदा नहीं है। क्योंकि पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि महरम रिश्ते जो होते हैं ना, उनके अंदर एक ताल्लुक में फ़र्क रहना चाहिए, और उस फ़र्क को मलहूज़े खातिर रखने के लिए ये बात कही गई। और साथ ही कहा कि जो पहले हुआ क्या हुआ, इल्ला मा कद सलफ, हाँ जो कुछ हो चुका, पिछली जिंदगी की गलतियों पे शर्मिंदा हो जाओ, जो हो गया उसको चेंज कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। ये हमारे दीन का खूबसूरत रूप है, घड़े मुर्दे ना उखेड़ो, पिछली गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान बाप दादा के नाम पर गलती पे गलती करते जाते हैं, चूंकि ऐसे था चूंकि ऐसे है, चूंकि वैसे है यहाँ है। यहाँ बात साफ है कि या में जाहिलियत में सौतेली माओ से निकाह करते, फिर या बगैर निकाह में उनको रख लेते, और ऐसे निकाह को अरब लोग निकाहे मक्त कहते थे। मीम काफ ता, आगे लफ्ज आ रहा है मक्ता, वही लफ्ज है, इसी आयत में आ रहा है, बुरा निकाह समझते थे। और इसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता था ना उसको भी मक्ती कहते थे, यानी पसंदीदा अमल तब भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही वो इजाज़त नहीं दी जा रही उसकी। इसलिए फरमाया कि तुम ऐसा ना करो, ये अच्छा नहीं है, ये फितरत इंसानी के खिलाफ है। और जो पहले कर चुके हो उसकी फिक्र ना करो, अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। सवाल पैदा होता है हराम क्यों कर दिया, तो जवाब दिया गया इन्नहु काना फाहिशतन, ये बड़ी बेहयाई की बात है, वह मक्ता, और अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाली बात है। यहाँ लफ्ज़ आ गया मक्ती वाला जो बोला था, इसको थोड़ा सा देखिएगा, मीन काफ्ता, अलमक्त कहते हैं सख्त बुगज उस शख्स के खिलाफ जिसे तुम देखो कि बुरे काम का आदी है। यानी कुछ लोग होते हैं ना बुरा काम करते हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना तो आपको गुस्सा आता है, आप कहते हैं ये गलत काम कर रहा है। इसी तरह निकाहुल मक्त कहते हैं बाप के मर जाने पर उसकी मनकूहा से निकाह करना, और जाहिलियत में ऐसे निकाह आम थे, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया। नफरत और बेजारी के मानों में, यानी इन्नहु कान फाहिशतन, ये तो समझ आ गई कि बेहयाई है कि बाप और बेटे का पर्दा एक ही औरत से खुलेगा, तो ये फुहश बात है। और मक्ता कहकर बता दिया कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है, और जो काम अल्लाह को पसंद नहीं होंगे उसका नतीजा अच्छा निकलेगा। याद रखिए, इंसान के बुरे अमाल के बुरे नतीजे जो अल्लाह ताला को नाराज करने पे दुनिया में आते हैं ना, उसमें एक ये भी है, जानते बूझते वो हरकतें करना जो अल्लाह को नाराज कर दें। और ये जुमला बोलते हुए मुझे खौफ आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी मुसीबतें और परेशानियों वाली जो बुक पढ़ाई है कि मुसीबतों से कैसे निपटें, शायद हर टॉपिक में ये बात हुई है कि आज हम मुसलमान अपनी खुशियों में ऐसे लगता है दीता और दानिस्ता, जानते बूझते अल्लाह को नाराज करते हैं। बल्कि हमारा अब स्टाइल ये बन गया, लोग क्या कहते हैं ना, शादी पे नहीं करोगे ये तो कब करोगे, भाई की शादी पे नहीं करोगे तो कब। तो अगर ये जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, तो अपनी शादी पे अल्लाह को नाराज नहीं करोगे तो और कब करोगे, भाई की शादी पे अल्लाह को नाराज नहीं करोगे तो और कब करोगे, ये अंदाज हो गया। तो याद रखिए, ये जो मक्त की कैफियत उस दौर में तो ये थी ना, आज इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने इससे हमें रोक दिया। क्या पता चला कि इस्लाम चाहता है कि इर्द गिर्द का माहौल ठीक रहे। अब इसे अगली आयत भी इसी के साथ ही है ना, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस्लाम क्या चाहता है कि इंसान जहाँ काम करे उसके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा खूबसूरत हो। जब खूबसूरत माहौल होगा ना, प्रोडक्टिविटी होगी, गलत कामों के असबाब जो है वो कम होने लगेंगे। जब कुछ माँ बहनें, हम सब जानते हैं कि इर्द गिर्द में रहने वाले लोग जो हैं उनकी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनसे निकाह हराम है, तब अगली आयत में इसको करके फिर मैं इंशाल्लाह पीछे से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन सबकी दूंगी। अहम आयत है, पारे की आखिरी आयत है, और जो मजमून अगले पारे में शुरू होना है ना उसकी पहली आयत है। यानी मुझे हमेशा आयत 23 पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि ये कनेक्टर है, एक वॉल इधर लगा हुआ है पीछे वाले हिस्से में और एक कनेक्टर इधर लग रहा है। आइए पढ़ते हैं, बहुत सिंपल आयत है, फिर इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम की गई तुम पर। अब यहाँ 1, 2, 3 लगाएंगे, ये मुहर्रमात की लिस्ट है, वो औरतें जिनसे किसी मर्द का निकाह नहीं हो सकता उसकी लिस्ट है। किन रिश्तों में निकाह नहीं, किन किन रिश्तेदारों से शादी नहीं, और जाहिर है जिनसे शादी नहीं हो सकती तो वो औरत के लिए महरम रिश्ते भी हैं। आप ये कह लीजिए कि इन रिश्तों में आपस में पर्दा और हिजाब की पाबंदियां नरम होंगी। कौन कौन है? हुर्रिमत, हराम की गई। हुर्रिमत से मुराद आप समझ ही रहे हैं, हराम की। क्या हराम की गई? निकाह हराम किया गया। और मजहूल का सीगा है, क्या पता चला कि ये किसने की है, यहां नहीं पता, लेकिन हमें पता चल गया कि ये अल्लाह ताला ने की है जो हम सबको पैदा करने वाला है। अलैकुम, तुम पर। कौन है यहाँ तुम पर? मर्द, मुसलमान मर्दों पर। कौन कौन सी औरतें हराम है? नंबर 1 लिखिए ऊपर, 1, 2 लिख लें, ABC डाल लें, आपकी याद दहानी के लिए लिस्ट तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और एंड पे आप सॉर्ट आउट करेंगे तो इसमें से 3 किस्म की लिस्टें निकलेंगी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। नंबर 1, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ। उम्महातुकुम, उम्मुन से माँ, और उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ। कौन सी माएँ? अब इसकी डिस्क्रिप्शन अपने पास लिखिए, माँ, सगी, सौतेली, नानी, दादी। यानी माँ के लफ्ज में ऊपर की सारी माएँ आ जाएंगी, अपनी भी माँ तो बाप की भी माँ, नानी, दादी, फिर उससे ऊपर पर दादी, पर नानी, ठीक है। नंबर 2, बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ। इसके नीचे फिर लिखिए, बनात में बेटी, फिर बेटी की बेटी। बनात में कौन सी बेटी? हालांकि आगे जिक्र आएगा, लेकिन यहां भी लिख लें, सगी बेटी, सौतेली बेटी, रजाई बेटी। और उधर उम्महात में भी रजाई माँ लिख लें साथ। मैं फिर बोलती हूँ, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम में तुम्हारी माएँ। जमा का सीगा क्यों आया? क्योंकि मुख्तलिफ माएँ होती हैं, सगी माँ होती है, सौतेली माँ होती है, ससुराली माँ होती है, सहर जिसे कहते हैं, और चौथी रजाई माँ। एक मर्द की ये 4 माएँ हो सकती हैं, अपनी माँ, सौतेली माँ, सास जिसको बीवी की माँ कहते हैं, उसका जिक्र आगे अलग आएगा, लेकिन यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं, और चौथी बात, अगर किसी दूसरी औरत का दूध भी है। वह बनातुकुम, बनातुकुम में भी सगी बेटियाँ, अपनी बेटियाँ, यानी बनातुकुम में सौतेली बेटियाँ, यानी बीवी की दूसरे शौहर से बेटी या उधर से, और फिर इसी तरह बनातुकुम में रजाई बेटियाँ भी आती हैं। फिर चौथी बेटी की बेटी, नवासियाँ, पोतियाँ, ये सारी बेटियों के अंडर नीचे आएंगी, यानी सब इसी से नीचे जाएंगे। नंबर 3, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें। कौन सी बहनें? सगी, सौतेली, रजाई बहनें, ठीक है। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ, फूफी, सगी फूफी, सौतेली फूफी, और फिर रजाई फूफी भी इसी में आएगा, लेकिन इसमें सहर की फूफी नहीं आएगी, यानी बीवी की फूफी हराम नहीं है, ये गलती ना करें, इसलिए मैं सारों की लिस्ट बनवा रही हूँ आपसे। वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं। जमा क्यों आई? एक क्यों नहीं कह दी खाला? नहीं, इसलिए कि सगी खाला, सौतेली खाला, रजाई खाला, लेकिन ससुराली खाला नहीं, यानी बीवी की खाला नहीं हराम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, वह बनात लखी, भाई की बेटी, भतीजी बोलते हैं ना, इसमें भी वही आएगा, सगे भाई की बेटी, सौतेले भाई की बेटी, और फिर भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं ना, उसकी बेटियां आगे से, भतीजियों की बेटियां, जिसको आप नवासियां कहेंगे। सेम रूल्स है, वह बनातुल उख्ती, और भांजियां, बहन की बेटी, सगी बहन की बेटी, सौतेली बहन की बेटी, और बेटियों की फिर बेटियां, यानी जो के नवासियों के जिम्मन में आती हैं। नेक्स्ट, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। पीछे जिक्र कर दिया, यहां अलग से भी कह दिया दूध पिलाने वाली माएं, जैसे नबी सल्लम के लिए हलीमा सादिया का नाम आता है, अरबों में ये बहुत आम था। यहां खास तौर पर यह जिक्र आ गया कि तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ठीक है। वह अखावात को मिनर रदात, और तुम्हारी दूध शरीक बहने, इसका भी मैंने ऊपर जिक्र कर दिया लेकिन यहां अलग से नाम आ गया। वह उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएं, हम इसको क्या कहते हैं, सास, खुशदामन या सास, ठीक है, मदर इन लॉ, इसका भी जिक्र उधर आया लेकिन अलग भी आ गया। चलिए, व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, और तुम्हारी रबाइब, रबाइब रबीबत उनसे है, वो बच्चियां जो तुम्हारी गोदों में पली हों। ये कौन सी बच्ची हैं, जो किसी मर्द के पास आने वाली बीवी की पहले से मौजूद बेटी, सौतेली बेटी लिख लें इसको। जिक्र इसका मैंने बेटियों में कर भी दिया लेकिन यहां लफ्ज रबाइब को देखिए, बड़ा प्यारा लफ्ज है, रौ बा बा इसका रूट है, रब का लफ्ज है ना, वो इसी से है, तरबियत भी इसी से है। तो रबीबा कहते हैं सौतेली बेटी को, असल में तो कहते हैं गोद की बच्ची को, लेकिन मसला क्या है कि जब बीवी के साथ शादी हुई तो क्या सिर्फ उसकी न्यू बॉर्न या गोद की बच्ची है, नहीं, इवन जवान भी हो चुकी है। इशारा इधर दे दिया गया कि तुम्हारी दूसरी बेटी यानी सौतेली बेटी है। इन लड़कियों के लिए जो बीवियों के साथ आ जाएं जो इनके पहले शोहरों से हों। फिर इसी तरह से रबीबा उस बकरी को भी कहते हैं जिसे चरागाह में नहीं भेजते बल्कि घर के चारे पर उसको पालते हैं, ताकि जिस वक्त जरूर हो तो इसका दूध धो लिया जाए, यानी घर की बच्ची कह लें इसको अपने लफ्जों में। क्या पता चला कि रबीबा का लफ्ज यहां बोलकर सौतेली बेटियों को इसमें शामिल किया। हुजूर हजर से है, हुजूर हजर कहते हैं गोद को, हाजिम रा इसका रूट लिख लीजिए, हुजूर हजर कहते हैं पत्थर को, ठीक है। अब हा पे जबर हुई तो पत्थर हो गया, हा की जेर हिजरन तो मानी होता है रोक देना, ठीक है। हुजरा तुन कहते हैं ऊंटों के बाड़े को, कमरे को भी कहते हैं, हिजर कह देंगे तो अकल है, इंसान को रोकती है, तो इन सब में रोकने की चीज है ना। कौमे समूद की बस्तियों का नाम भी अरबी में हिजर आया है। तो यहां फी हुजूरिकुम गोद क्या है कि जो गोद होती है ना वो बच्चे को बहुत सारी चीजों से रोक देती है, माँ की गोद में आते ही बच्चा बहुत ज्यादा अपने आप को महफूज समझने लगता है, ठीक है। तो यहां मुराद क्या है, गोदों में पली हो। मिन निसाइकुम अल्लाती, तुम्हारी उन बीवियों से, या फिर देखिए अल्लाती को सही पढ़िएगा, कौन सी बीवी है, दखल तुम बिहिन्ना, जिनसे तुमने सोहबत की, मुकारबत की, इशारा है ताल्लुक कायम होने का। देख रहे हैं आप अरबी में पहले कदफदा का लफ्ज पढ़ा आपने, यहां दखल तुम मुराजे के जिन बीवियों से जिस्मानी ताल्लुक भी कायम हुआ हो। क्या पता चला, ऐसी औरत, ये लिखे अपने पास, ऐसी औरत जिसे सिर्फ निकाह हुआ और रुखसती से पहले ही तलाक हो गई या वो मर गई, उसकी बेटी हराम नहीं है, ये मतलब है, जब तक बीवी से ताल्लुक ना, और इसकी हिकमत भी है ना, जैसे बाप की बीवी से निकाह पसंदीदा नहीं है ना, इस तरह बीवी की बेटी से निकाह पसंदीदा नहीं है, ठीक है। तो जब ताल्लुक नहीं कायम हुआ तो उस चीज का खतरा नहीं था। हाँ, फ़ाइलम तकून दखल तुम बिहिन्ना, फिर अगर तुमने इन बीवियों से सोहबत ना की, कुर्बत ना की, तो फला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। फिर दोहरा देती हूँ, बीवी की वो बेटी जिस बीवी से ताल्लुक कायम किया हो वो बेटी भी अपनी बेटी की तरह हराम हो जाती है। सिर्फ निकाह के बाद अगर ताल्लुक टूट गया तो उस औरत की जो बेटियां होंगी वो उस मर्द के लिए हराम नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, वहलाइल वबनाइकुम अल्लज़ीन मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हों। हलाइल का लफ्ज ना हलीला से है, हलीला कहते हैं हलाल की हुई औरत, किसके लिए हलाल की हुई, अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों के लिए हलाल शुदा औरत, तो वो क्या होगी, बेटे की बीवी, बहू, तो फिर बहू भी हराम है, किसी मर्द पर अपनी बहू से निकाह हराम है। और ये क्यामत तक होगा, यानी वो तलाक हो गई, बेटा फौत हो गया, नहीं हुआ, रह गया, बाद की बात है, ये अबदी महरम है, ठीक है। कौन से बेटे, शर्त एक है, अस्लाबिकुम, सुलभी बेटे, यानी सगे बेटे, इसमें सिर्फ सगे की बात है, ये नोट करने का फर्क है। जिनको हम बहुएं कहते हैं। मुंह बोले बेटे कि मुतलका से निकाह हराम नहीं है, सूरत अलअहज़ाब में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सवाल पैदा होता है कि बीवी के लिए हलाइल या हलीला का लफ्ज़ क्यों आया है? तो देखिए, हल्लुन का लफ्ज़ होता है ना, गिरा खोलने को कहते हैं। वाहलुल उक़दता मिन लिसानी, हम पढ़ते हैं ना दुआ में, मेरी जुबान की गिरा खोल दें। इसी तरह जब किसी जमी हुई चीज को पिघलाया जाए तो इसको हल करना कहते हैं। हम क्या कहते हैं, चीनी पानी में हल हो गई, ठीक है, गिरा खुल गई। तो शादी जब हुई तो वो औरत उस मर्द के लिए जायज हो गई ना, तो लिहाजा किसी भी औरत के साथ किसी मर्द का रहना हलाल हो गया, तो गोया कि वो उसकी बीवी है। इसके और भी बहुत सारे खूबसूरत रास्ते हैं, लेकिन अभी इतना काफी आपके लिए, पता चला कि बहू से भी निकाह हराम है। इसके बाद ये सब जो थी ना, इसको लिख लीजिए, ये तो हमेशा का मामला है, अबदी महरुमात फॉर एवर। बट आगे एक और चीज, वान तजमाउ बैनल उख्तैन, और ये भी तुम पर हराम किया गया कि तुम बयक वक्त दो बहनों को एक निकाह में जमा करो। ये कब होगा? एक बहन एक मर्द के निकाह में, अब बहन की तो कहीं नहीं शादी हो सकती, लेकिन उसका मर्द दूसरी शादी कर सकता है ना, तो उस बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन ये पाबंदी कब टूट सकती है? पहली बीवी फौत हो जाए या तलाक हो जाए, तो ये उस ज़िमन में आ जाता है। और जाहिर बात है कि बहन की जिंदगी में तो वो फिर मुहर्रमात में आएगी ना, साली जिसको आप कहते हैं। अब ये जो हम कहते हैं वक्ती महरम, बाद के महरम, फला महरम, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं। जब तक बहन है तो बहनोई से निकाह तो नहीं है, लेकिन वो उसके लिए गैर महरम ही होगा, यानी उसके साथ खलवत होना, खिचेड़ खानी, और जो हमारे फजूल रस्में हैं, साली आधे घर वाली और उसका गोद बढ़ाई और पता नहीं दूध पिलाई, ये सब इस्लाम से मैच नहीं करते, ठीक है। अच्छा, यहां तक लिखा ना, अब एक चीज हदीस से मिलती है, वो भी साथ ही लिख ले। दो बहनों को एक मर्द के निकाह में नहीं दे सकते ना, तो खाला भंजी को भी एक मर्द के निकाह में नहीं दे सकते। ये हदीस से पता चलता है, कुरान को हदीस के बगैर नहीं पढ़ सकते अब, और हदीस खाली पढ़ें कुरान ना पढ़ें तो फिर भी नहीं समझेंगे। ये दो आंखों की तरह, दोनों लेंजेस लगाएंगे फिर समझ आएगी, ठीक है। और तीसरी चीज, फूफी भतीजी, यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि बहनोई, खालू और फूफा, ये तीनों अपनी बीवियों की मौजूदगी में तो महरम है, निकाह नहीं हो सकता, लेकिन तीनों के जाने के बाद निकाह हो सकता है। अच्छा, अब इतने कामा सुन के आगे कहा, अच्छा अगर हम तो बहुत कमी बेशियां कर चुके, तो वही खूबसूरत लफ्ज, इल्ला मा कद सलफ, जो हो चुका, जो पहले हुआ उसको छोड़ दो। ये है इस्लाम का खूबसूरत दरवाजा, के आने वालों को पिछली जिंदगी के ताने नहीं देता। हम तो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, किसने 900 चूहे गिने थे? और कौन सी बिल्ली आपने हज पे जाती देखी, कभी सुना? लेकिन ये हमारे कल्चर में अल्लाह ताना नहीं देता, क्योंकि इन अल्लाह काना गफूर रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो, आइंदा के लिए अपनी जिंदगी में इसलाह कर लो, ना समझी में जो कर चुके उसको अल्लाह ताला माफ करेगा। कितने लिस्ट में लोग बने हैं, कोई गिन रहा था आप में से? एक उस लिस्ट का अगले हिस्से में आएगा जो हम कल के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जितनी बात इस हिस्से में आई ना, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी आपसे, और वो क्या है कि इस्लाम ये चाहता है कि एक मर्द के इर्द गिर्द का माहौल बहुत प्रैक्टिकल हो। अगर घर की औरतें, और आपने देखा ये जितनी भी औरतें हैं ना, ये सारी घर में रहती हैं ना, माँ बहन बेटियां, अगर इनमें भी निकाह जायज होता तो आप जरा सोचिए कि औरतों की कैफियत क्या होती घर छोड़ते हुए। बाप बेटी का ताल्लुक कायम होता तो क्या एक माँ घर से निकल सकती थी जवान बेटी को छोड़कर? भाई बहन का निकाह होता, और याद रखिए हदीस से पता चलता है कि क्यामत के करीब महर्रमात में जिना होगा। अब वो तो आउटडेटेड हो गया ना, लड़का लड़की, दोस्त यार, बॉयफ्रेंड, लड़की लड़का, वो तो अब फिल्मों में ओल्ड बात है, अब तो नया चस्का चाहिए। और इसके भी जो दरवाजे खुले हैं, अल्लाह हम सबको बचाए, हमारे घरों के माहौल अच्छे रखे। इसलिए घरों की हदें हैं, बेटों को बेटियों को अलग रखें, 7 साल के बाद उनके बिस्तर अलग करें, ऐसा घर का माहौल ही ना हो कि फिल्में गाने ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिसके बाद आप, अल्लाह ना करे कि बेटे जो है वो अपनी बहनों ही के साथ मजबूर हो जाए। ये बात कड़वी है बहुत, लेकिन ये सच है, ये ऐसी कड़वा सच है कि जिसने कितनों की जिंदगियां जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। तो लिहाजा आपको सारी बात पढ़ने के बाद जो बात समझ आई होगी वो ये आई होगी कि इस्लाम बहुत लॉजिकल दीन है, ऐसे ही पकड़ के डंडे के जोर पे नहीं मारता। हर चीज के पास रीजन है, हर चीज की हिकमत है। जिंदगी में जब भी अल्लाह ताला के कानून आएंगे तब्दीलियां आएंगी। आज हमारे पूरे सोशल सेटअप को रिवाइज करने की जरूरत है। यकीन करें, आज हमने इतने रॉन्ग किस्म के मिथ बना लिए, गलत किस्म की सोचें बना ली, ये नहीं वो नहीं, हम तो बड़े नेक हैं, बड़े वो हैं, ये है वो है, तो ये हमारी गलत फहमी है। अगर आप ये पूरी लिस्ट को देखें ना, तो 7-7 नसब से हैं सगे रिश्ते, जिसको आप कहेंगे, बोल देती हूँ माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भांजी, भतीजी। ठीक है, हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि 7 औरतें नसब की वजह से हराम है और 7 ससुराल की वजह से। अब 7 ससुराल वाली भी गिन लीजिए, बहू, सास, और फिर आपने उसके बाद यही आयत तिलावत की थी। ठीक है, और 7 रिश्ते इसमें हुरमत के हैं दूध की वजह से, रजात, 7 नसब के, 7 रजात के, रजाई माँ, रजाई बेटी, रजाई बहन, रजाई फूफी, रजाई खाला, रजाई भांजी और रजाई भतीजी। ठीक है, 7 ससुराली रिश्ते कौन से हैं, लिखिए। सास अभी हो गया, लेकिन सिर्फ रिवीजन हो रही है आपकी। सास, सौतेली बेटी रबीबा, फिर बहू, सगी बहनों का जमा होना एक निकाह में, और इसी तरह से फूफी भतीजी और खाला भांजी। ठीक है, तो ये सारा कुछ बयान कर दिया, ये जो मैंने आपको बताया कि हदीस में, तो हदीस सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत अबू हुरैरा से, आपने फरमाया फूफी और भतीजी और खाला और भांजी को एक निकाह में जमा ना किया जाए, क्योंकि दो औरतें जिनके बीच में रहम का रिश्ता होता है ना, मदर वूम, तो अगर इन दोनों औरतों में से एक को मर्द और दूसरी को औरत मान लिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो गए, क्योंकि इससे बहुत सारे फिर आगे खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो सारी बात के बाद हम सब क्या कहेंगे कि अल्लाह से प्यारा निज़ाम फितरत कोई दे नहीं सकता। कौन है जो इतनी बारीकियां ले? और देखिए, जिन मजहबों में कोई रिश्तों की कैद नहीं है, जहां पता ही नहीं, भाई बहन का फर्क नहीं पता, और जो जुबानें ये बोलती हैं कि सबसे अच्छी औरत जो तुम शादी जिसे कर सकते हो वो तो तुम्हारी बहन है, क्योंकि वो बचपन से तुम्हारे साथ पली है, घर में रही, वो तुम्हारे मिजाज को जानती है, उसको पकड़कर अजनबी को दे देते हो और एक अजनबी लड़की घर ले आते हो। ये आज के दौर की बात है। तो याद रखिए, जहां अकल इस्तेमाल होती है ना, वहां शरीयत फिर अकल के पीछे चलेगी, लेकिन दीन पे नहीं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से चौथा पारा पूरा हुआ है। अगले पारे के शुरू में आपको मजीद यही अहकाम मिलेंगे, बल्कि बहुत अहम सबक है कल का, जो अगला होगा उसमें निकाह के इंग्रीडियंट्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें निकाह में लाजिम है, किसके बगैर होता है, किसके बगैर नहीं होता। अल्लाह करे कि हम इस सारे इल्म को पा सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। कोई सवाल है क्विकली?
आपने वक्त ही महरम की बात की, तो क्या बहनों के साथ हज किया जा सकता है?
बहन की मौजूदगी में बहनोई के साथ हज किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, इसका जवाब आपको कल के सबक में वैसे मिलेगा, महरम क्यों है नहीं। आप कहते हैं कि बहनोई के साथ चूंकि इस वक्त निकाह जायज नहीं है तो वो महरम हो गया। गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, बहनोई के साथ निकाह इस वक्त नहीं हो सकता तो वो महरम है। ठीक है, मिसाल है, तो आप एक मैरिड सिस्टर है माशाल्लाह, जब एक औरत मैरिड होती है तो क्या उस वक्त आपका किसी दूसरे मर्द से निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मेरा भी नहीं हो सकता ना। तो फिर मैं सारी दुनिया के मर्दों से पर्दा उतार दूं? समझ आई बात? ये कल के सबक का पहला पॉइंट, वल मुहसनात मिन निसा, के सारी लिस्ट में एक एड ऑन कर लो कि हर शादीशुदा औरत भी दूसरे मर्द पे हराम है। बात समझ गए? इस वक्त निकाह हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। वो तो हम सबका ही नहीं हो सकता जो मैरिड है। अल्लाह हमारे शोहरों को सलामत रखे, तो हमारा निकाह तो किसी से नहीं हो सकता, तो मैं पर्दा क्यों करूं? समझ आई? क्योंकि मुआशरे से फोहश का रोक सकते, तो इस तरह वो गैर महरम ही होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً